पहला इतिहास अध्याय 17। अध्याय 17 पद 2 से लेकर 6 तक। नाथान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी दिन रात को परमेश्वर का ये वचन नाथान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इसराइलियों को मिस्र से ले आया आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूं। जहां जहां मैंने सब इसराइलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इसराइलियों के न्यायिकों में से, जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे लिए न्याय करना गलत है। हम मनुष्य के सच्चे उद्देश्य का अनुमान लगाते हैं। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि मैं नहीं सोचता हूं कि परमेश्वर कभी ऐसा चाहता होगा कि हम उसकी आराधना के लिए आधुनिक भवन बनाएं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की आराधना खुले प्राकृतिक वातावरण में अधिक गहराई से की जा सकती है, न कि भवन में। मैं चाहता हूं कि मौसम अनुकूल रहे और हम खुले में आराधना कर सके, ये अधिक उपयुक्त होगा। यही परमेश्वर की आराधना करने के लिए महामंदिर है। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने वेदी बनाने के नियम दिए, परमेश्वर ने कहा, तुम पत्थर पर कोई औजार का प्रयोग मत करना, मुझे नक्काशीदार सुंदर पत्थर नहीं चाहिए, साधारण पत्थर लेना जिस पर औजार चलाया ना गया हो और उससे वेदी बनाना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि लोगों का आकर्षण उस पर से हटकर सुंदर सजावट और आभूषणों पर जाए जो लोगों ने बनाए हैं। मैं ऐसा नहीं समझता कि अब परमेश्वर बदल गया है। मैं नहीं समझता कि अब परमेश्वर लोगों को सुंदर बनावट और सजावट से आकर्षित करना चाहता है। मैं समझता हूं कि हम जितने अधिक प्राकृतिक परमेश्वर की उपासना में होंगे, उतना ही अधिक हम परमेश्वर के मन और इच्छा के होंगे। जितना हो सके हमें प्राकृतिक होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, यदि मौसम अनुकूल हो तो मैं खुले में आराधना करना पसंद करूंगा। मुझे सभा केंद्र में ऊपर जाना और खुले में कक्षा लेना और देवदारू के पेड़ों के नीचे बैठना अच्छा लगता है। यहां पेड़ों की खुशबू आती है, हवा के चलने की सरसराहट होती है, जहां हम चिड़ियों की मधुर आवाज को सुन सकते और गिलहरी को ऊपर नीचे चढ़ते उतरते देख सकते हैं। मुझे परमेश्वर की आराधना इस वातावरण में करना अच्छा लगता है, जहां नीला आकाश ऊपर है, मनुष्य की उसमें कोई हाथ नहीं है और वहां मनुष्य के हाथ के कार्यों में से कुछ भी नहीं होता है जिसकी आप प्रशंसा कर सको। परमेश्वर ने कहा, अब तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूं। क्या मैंने किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैं तंबू में संतुष्ट हूं। हम लोग प्रार्थना करते रहे हैं कि हमें यहां क्या क्या करना चाहिए। निश्चय ही शायद हम इस बड़ी जमीन का प्रयोग कर पाएंगे। अच्छा होगा कि हम रविवार की सुबह 2 आराधना किया करें। यदि परमेश्वर शक्ति दे तो मैं 3 आराधना करना पसंद करूंगा। ये तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों की भीड़ को चर्च भवन के बाहर खड़े रहकर स्क्रीन पर आराधना ना देखना पड़ेगी। अच्छा रहेगा हम सब एक ही भवन में मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। हमारे पास पैसा भी है कि हम ऐसा कर सके। हमारी समिति इस पर विचार विमर्श कर रही है। हमारे पास जमीन है, हम भवन बनाने का विचार कर रहे हैं, परंतु कुछ भी है, निर्णय ये निकला क्योंकि हम प्रभु के शीघ्र आने को अनुभव कर रहे हैं। अच्छा रहेगा इस धन को जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है पहुंचाने में खर्च किया जाए, न कि भवन बनाने में। इससे हमारे लोगों को कुछ असुविधा हो सकती है, पर मौसम अच्छा है और कुछ लोगों को खुले में बाहर बैठना अच्छा लगता है। हमने बाहर से कुछ प्रचारक बुलाए हैं। ईस्टर की सूर्य उदय की आराधना बाहर रखें ताकि लोग आकर बाहर मैदान में बैठें। मैदान में बड़ी भीड़ उपस्थित रहे और वही आराधना करें। हमें नहीं पता क्या करना चाहिए। हमें निश्चय ही अधिक जगह की आवश्यकता है और इसके लिए हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। मैंने प्लास्टिक के महामंदिर भी देखे। ये प्लास्टिक से बने कम खर्चे वाले तंबू के समान होते हैं। लोहे के ढांचे पर सुंदर प्लास्टिक का उन्नत तंबू जो मेरी पत्नी को पसंद नहीं है। परंतु दाऊद में परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाने की इच्छा थी। उसने कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नाथान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। परमेश्वर ने नाथान से कहा, वापस जाकर दाऊद से कह कि मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा। मैं सदा तंबू में रहा हूं और मैं इसका अभ्यस्त हो गया हूं। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरे लिए देवदारू का भवन बनाओ। ये जानते हुए कि दाऊद निराश होगा, परमेश्वर ने उससे कहा, पद 7, सो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह। ये मुझे अच्छा लगता है कि परमेश्वर कहे, मेरे दास चक। क्या ये एक सुंदर संबोधन नहीं है कि परमेश्वर आपको इस तरह संबोधित करे, मेरे दास? ये कितनी खुशी और आदर की बात है। अध्याय 17 पद 7 से लेकर 10 तक। कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुमको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इसराइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वो अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलाया मान ना हो, और कुटिल लोग उसको नाश न करने पाएगा जैसे कि पहले दिनों में करते थे, उस समय जब मैं अपनी प्रजा इसराइल के ऊपर न्यायी ठहराता था। सो मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे ये भी बताता हूं कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। परमेश्वर कभी कभी अपनी भलाइयां मुझे गिनाता है और मैं फूला नहीं समाता हूं, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि मैं संसारिक अभिलाषाओं से घिर कर सोचता हूं, मुझे ये वस्तु मिल जाए तो कितना अच्छा है, या यदि वैसा होता तो कितना महान है। तब परमेश्वर मुझसे कहता है, सुन, क्या मैंने तेरे लिए बहुत कुछ नहीं किया? देख, जो कुछ मैंने तेरे लिए किया है, क्या उसे तू संतुष्ट नहीं है? यदि तू चाहता है तो मैं और भी करूंगा, परंतु तू मुझे ये बता कि तू संतुष्ट है या नहीं। हां प्रभु, मैं संतुष्ट हूं, मैं संतुष्ट हूं। परमेश्वर ने कहा, दाऊद देख मैंने तेरे लिए क्या किया है। अब क्योंकि दाऊद परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने कहा, नहीं मैं नहीं चाहता कि तू मेरे लिए कुछ कर दाऊद, मुझे बताने दे कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है और क्या करने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि बहुत बार सेवक लोगों से कहते रहते हैं, तुम परमेश्वर के लिए ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, अधिक देना चाहिए, आत्म त्याग करना चाहिए, अधिक प्रार्थना करनी चाहिए और अधिक गवाही देनी चाहिए। वे सदा इस बात पर जोर देते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए क्या क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने दाऊद से कहा, नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है। दिलचस्प बात तो यह है कि नए नियम में इसी बात पर जोर दिया गया है कि परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए क्या क्या किया है, परंतु इस विषय पर हम बहुत कम उपदेश सुनते हैं। हमारे अधिकांश धर्मोपदेश होते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए, जबकि पूरे नए नियम में जोर इस बात पर दिया गया है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है उसकी हमें प्रतीति करना है। वो देखता है कि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे प्रतीति करना है। ये सबसे उत्तम सेवा और स्तुति है, यही सबसे उत्तम आराधना है जो आप कर सकते हैं कि उसके कार्यों की प्रतीति करो। परमेश्वर के किसी भी कार्य को जानना और प्रतीति करने की प्रेरणा से वो आता है जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं। आपका कोई भी कार्य इस कोशिश में नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर भी मेरे लिए कुछ करे, नहीं, ये तो नए नियम के विरुद्ध है। नए नियम की शिक्षा है, जो कुछ परमेश्वर ने किया है उसकी प्रतीति करो। पौलुस इफिसियों की पत्री के पहले पहले अध्यायों में लोगों को यही बताता है कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया है। देखिए इफिसियों पहला अध्याय 3-13। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। पद 5, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। पद 13, और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। परमेश्वर ने जो कुछ भी उनके लिए किया था उसे गिनते हुए पौलुस 3 अध्याय लिख देता है, और उसके बाद वो लिखता है इफिसियों 4:1, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर के प्रति और उसके कार्यों के प्रति उत्तरदायी हो। परमेश्वर ने जो कुछ किया उस पर पत्रस भी जोर देता है। पहला पत्रस 1:3-5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीराश के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। ये सब कुछ परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है, पर क्या मुझे भी इसमें से कुछ मिला है? हाँ, वो इस विषय पर आता है, परंतु ध्यान दे तो पहले वो परमेश्वर के काम पर आता है, ना कि मनुष्य के काम पर। कभी भी मनुष्य का स्थान प्रथम नहीं होता है। पहला कार्य परमेश्वर का होता है तथा मनुष्य उत्तर देता है। पत्रस पर फिर से ध्यान दे, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। ये परमेश्वर का कार्य है। और तब वो हमारे कार्य के बारे में बात करता है जो विश्वास से आरंभ होता है और आसान है। हमें बस विश्वास करना है, मात्र विश्वास। परमेश्वर ने जो कुछ किया बहुत महान किया है। और परमेश्वर दाऊद से स्पष्ट कहता है, देख दाऊद, मैं तुझे भेड़शाला से भेड़ों के पीछे घूमने से निकालकर ले आया हूं। मैंने तुझे अपने लोगों का राजा बनाया और तुझे आशीष दी और तेरे शत्रुओं को तेरे सामने से मिटा डाला और तुझे इस देश में बसाया है। यदि ये काफी ना हो दाऊद, तो मैं तेरे लिए और अधिक करूंगा। मैं तेरे साथ और अधिक करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं तेरे द्वारा तेरा वंश स्थापित करूंगा। मेरा राजा दाऊद तेरे स्थापित वंश से आएगा, इसलिए मैं तेरे द्वारा तेरे वंश को स्थापित और आशीषित करूंगा। परमेश्वर दाऊद को बताना आरंभ करता है कि वो उसके लिए क्या करने जा रहा है, जो उसके लिए बहुत अधिक था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं क्या हूं, मैं क्या कह सकता हूं। किसी ने कहा है, जब प्रार्थना अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, तब शब्द नहीं रह जाते। मैं क्या कह सकता हूं प्रभु। ये जानकर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, हम मुक रह जाते हैं। हमें यही जानने की आवश्यकता है। पौलुस एफिसियों के लिए प्रार्थना भी करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि वे परमेश्वर को जाने और जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसको पहचान कर उसके योग्य चाल चलो और परमेश्वर के अनुग्रह का सारा धन जो यीशु मसीह में है प्राप्त करो। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है जानना आवश्यक है। उन दिनों में चरवाहे परमेश्वर के ज्ञान की शिक्षा देंगे। आज कलीसियाओं को इस बात की आवश्यकता है। उनको और अधिक ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है, ना कि परमेश्वर के लिए किए गए कार्यों पर जोर देना। पौलुस, तुम परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हो, यही बात आप हर जगह सुनोगे। ये गलत संदेश है। हमें वास्तव में ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। परमेश्वर को जानना, उसकी असीम शक्ति, उसकी सुंदरता, उसकी महानता, उसकी भलाई को जानना, और तब हम उसके कार्यों की प्रतीति करेंगे। पिता, हम तेरे कार्यों के लिए जो तूने हमारे लिए किए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी भलाई, तेरी आशीष प्रभु हमारे लिए बहुत है। प्रभु, हम तुझे प्रेम करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे सुंदर कार्यों का धन्यवाद कैसे करें, हम तेरी प्रशंसा कैसे करें। प्रभु, तेरी आत्मा की शक्ति जो हम हर दिन अपने चारों ओर देखते हैं, जब तू हर दिन अपनी सेना तैयार करता है। हे प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम तेरे असीम प्रेम को समझ सके। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।